نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير محسن انسانیت سیرا کے سلسلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکی دور شروع کر چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں روشنی پیدا کرنے کے لیے چند لوگوں کو پہلے سے ہی توحید سے جوڑا ہوا تھا یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں پھر اب ہم نے اس میں جو چیز شروع کی ہے وہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو پہلا دور جو تھا نبوت کا دعوت کا دور جو تھا وہ خفیہ دور تھا تو خفیہ دور میں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجیز کیا تھیں ایک جملہ بولتی ہوں اگر آپ اس ٹاپک کے شروع میں ہی لکھ لیں جہاں سے یہ چیپٹر ہمارا شروع ہوا تھا مخالفتوں کے طوفان سے گزرتے ہوئے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو پہلا حصہ مکی دور کہلاتا ہے ہم سب اس سے فیملیئر ہیں کسی کو بھی اس سے کوئی انکار نہیں ہے دوسرا دور مدنی دور ہے آپ لکھ لیجئے مکی دور کیا ہے تبلیغ کا دور ہے ٹریننگ اور دعویٰ ٹیم تیار ہوئی وہ حالات قائم کیے گئے جس کے بعد وہ گروہ تیار ہو جاتا جس نے مدینہ میں جا کر انقلاب برپا کرنا تھا تو مکی دور کا خلاصہ دعوت و تبلیغ اور تربیت اور آگے جا کے انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ٹاپک جب مدنی دور کا شروع ہوگا تو وہاں جا کے دوبارہ بول دوں گی تو مدینہ کا دور کیا تھا مدنی دور کیا تھا انقلاب ظاہری طور پہ بھی انقلاب آیا شریعت بنتی گئی اور مختلف سے مختلف چیزیں چلتی گئیں بالکل اسی طرح سے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور کہ جس وقت آپ کے پاس یہ سارا معاملہ جو تھا وہ کھلا ہم پڑھیں گے پیج نمبر 148 آپ پر قریب ترین لوگوں کا ایمان لانا آپ کے اخلاص اور آپ کی صداقت کا بجائے خود ایک ثبوت ہے یہ وہ ہستیاں تھیں جو کئی برس سے آپ کی پرائیویٹ اور پبلک لائف سے اور آپ کے ظاہر و باطن سے پوری طرح واقف تھیں ان سے بڑھ کر آپ کی زندگی اور کردار اور آپ کے ذہن و فکر کو جاننے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا ان قریب ترین ہستیوں نے بالکل آغاز میں آپ کے بلاوے پر لبیک کہہ کر گویا ایک شہادت بہم پہنچا دی دعوت کی صداقت اور دائی کے اخلاص کی بات واضح یہاں آپ کے میرے لیے کمل کی بات نکل آئی ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو وہ ہماری بات مانیں تو اس کے لیے ہمارا کردار بڑا اہم ہے کیسے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا اگر وہ آپ کے اخلاق کی گواہی نہیں دیتے تو آپ کا دین قبول نہیں کریں گے کسی انسان کے قریب کے لوگ اگر اس کی بات مان لیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوئے کہ وہ شخص جو ہے اخلاق کا اچھا ہے اور آسان کر دیتی ہوں اپنے ارد گرد والوں سے پوچھئے کہ آپ کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے جو مکہ کے اندر رکھا اور آپ کی مختلف لوگوں نے گواہیاں بھی دیں کہ صادق اور امین ہے تو ان ساری چیزوں سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قریب کے لوگوں سے پہلے فائدہ دینا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کوئی خیر آپ دیں گے نا کسی کو تو سب سے پہلے آپ قریبیوں کو دیں گے اسی طرح کوئی امتحان کسی کا لیں گے تو بھی اپنے قریبیوں کا لیں گے مجھے پانی چاہیے تو میں کس کو کہوں گی چاہے میرا پین گر جائے تو میں اگر کسی سے مدد لینا چاہوں تو میں کن سے لوں گی جو میرے بالکل قریب ہے میں وہاں پیچھے علی روز سے تو نہیں کسی کو کہوں گی نا قریب والے کو کہوں گی تو یاد رکھیے اس میں عمل کی بات نوٹ کیجیے کہ اگر آپ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے قریب والوں کی گواہیاں خیر کی ہونی چاہیے آپ کے میرے حق میں اس کے لیے خون تو جلانا پڑتا ہے صبر بھی کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ لوگوں کی باتوں کے جواب میں برداشت بہت کرنی پڑتی ہے لیکن آپ اس کو اگر اللہ کا دین سمجھ کر یا دین کے دائی سمجھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اس کا بھی اجر دیں گے تو ابو بکر صدیق تو بچپن کے ساتھی تھے یہ سب کچھ ہونا ہی تھا ان کا معاملہ کیسے ہوا حضرت ابو بکر نے تحریک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنتے ہی اپنے خلقہ اثر میں زور و شور سے کام شروع کر دیا اس کو ہائی لائٹ کریں ہر وہ بھائی اور ہر وہ بہن جس کی زندگی میں اسلام آ جائے قرآن آ جائے یہ اس کا اولین فرض بنتا ہے کہ اپنے قریبیوں کو اس سے جوڑنا شروع کر دیں تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیتے ہیں ہے یہ تڑپ کہ میں تو کر رہی ہوں मेरे प्यारे कब करेंगे, और दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि अपनी हिदायत भी पूरी नहीं है। मुतद्दद अहम शख्सियात मसलन उस्मान, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन वक्कास, तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस इनकलाबी हलके का रुकन बना दिया। कितनों को पता है, या ज़रा सा अपने आपको बेनियाज करें हर चीज़ से। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं इन सब के साथ पूरी कहानियाँ हैं। आप हजरत साहबा के दरख्शां पहलू में बहुत सारे लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं। ये सब किसका सदका जारियत है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये बताना चाह रही हूँ, ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को आप बढ़ाना है ना, तो सदका जारिया को बढ़ाएं। दौलत बढ़ गई, बहुत है हमारे पास माशाल्लाह, कपड़े भी बहुत हैं, घर भी बड़े हैं, औलाद भी है, दुनिया की नेमतें हैं। अब आपकी मेरी ज़िंदगी का अगर बाकी वक्त इस हल में मज़ीद में गुजर जाए ना, कोई मेरा सदका जारिया बन जाए, कोई मेरी दावत पे आ जाए। अक्सर साथी जब आते हैं क्लासेस में और नए लोग आते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन उनसे ज़रूर होता है, आपको कैसे पता चला क्लासेस का? मैं अपने दिल में फिगर आउट कर रही होती हूँ, ये किसका अकाउंट खुला है, ये किसका सदका जारिया अब उसके घर जा रहा है, उसके अकाउंट में जा रहा है, और बाद जब उसको खुद भी नहीं पता होता। तो डोंट बी स्टिंजी, कंजूस ना बने, लोगों को खुले दिल से दीन की दावत दें। आपको एक चक्कर ही लगाना पड़ेगा ना, 15 मिनट पहले निकल जाएं, क्या होगा, सारा दिन गाड़ियां बेकार घूमती हैं, तो 2-4 लोगों को गाड़ी में बिठा कर लाएं। ये कब होगा, जब आप वक्त से पहले निकलेंगे, और खुद ही उस वक्त निकलेंगे जब जान पे पड़ी हुई है कि सब खड़े होंगे, तो फिर बात नहीं बनती। तो ये ज़ाया ना करें मौके। एक अच्छे ताजिर की तरह एक अच्छा मोमिन हर वक्त लोगों को ताड़ता रहता है, किस में खैर है, कौन मेरा सदका जारिया बन सकता है। ये तड़प ही इंशाल्लाह दूसरों तक दीन को पहुंचाएगी। बड़ी खामोशी, राजदारी और एहतियात से इस हलके के जवान हिम्मत कारकुन इसको वसत दे रहे थे, यानी ये तो बड़े बड़े भी लोग थे तो जवान भी थे। अम्मार, खब्बाब, अरकम, सईद बिन जैद, इन्हीं जैद बिन अमर के बेटे जिनका ऊपर तस्करा हुआ, ये वालिद की ज़िंदगी से मुतासिर थे, और आपको पता है यशरे मुबशरा में से भी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, उस्मान बिन मज़ून, उबैदा, सहैब रूमी रिदवानल्लाहु अलैहिम अजमाइन भी इस्लामी तहरीक के इब्तदाई खुफिया दौर में साबिकीन अव्वलीन की सफ़ में आ चुके थे। बात समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम इस वक्त? मैं कहती हूँ कि पूरा दिल दिमाग खुल जाता है बंदे का इन चीज़ों को पढ़ते हुए। और एक बात नोट कीजिएगा कि यंगस्टर्स ने पहले दीन को कबूल किया। बूढ़े लोग जो होते हैं ना, ये रिवायात के पाबंद होते हैं, जवान बेपरवाह होते हैं। वो किसी से प्यार भी करे तो खुल के कहते हैं, हाँ मुझे उससे प्यार है, हाँ मुझे उससे शादी करनी है। गुनाह करते हुए भी कोई नहीं डरते जवान, इसी तरह नेकी करते हुए भी कोई शर्म नहीं होती, गिल्ट नहीं होता उनको। बिल्कुल यही बात है, तो पहले आ गए ना, तो लिखिए ये बात। आज मैं और आप या 1 मिलियन मुसलमान भी इन साबिकीन अव्वलीन के दर्जे पे नहीं आ सकते, अशर मुबशरा में नहीं शामिल हो सकते जिनमें ये हो गए। किन को मिलती हैं खूबियाँ, किन को मिलती हैं ग्लैड टाइडिंग, किन को मिलती हैं खुशखबरियाँ, जो उस वक्त इस्लाम को लब्बैक कहते हैं जब लोग धुतकार रहे होते हैं, जो उस वक़्त कबूल करते हैं जब लोग इस्लाम का इनकार कर रहे होते हैं। और आज फिर वही दौर है। आज मैं और अब यकीन से नहीं कह सकते कि हम साबिकून अव्वलून हैं कि नहीं, हम अशर मुबशरा में हैं कि नहीं, लेकिन अल्लाह के पास आज भी ऐसे चांसेस मौजूद हैं कि वो किसी का ख़ानदान की पहली औरत समझ के लिख चुके नाम कि ये अपने ख़ानदान की पहली है जिसने मेरी मर्ज़ी को समझा, किसी को शहर की पहली, किसी को मोहल्ले की पहली, किसी को दोस्तों के ग्रुप में पहली, लिख चुके आपका नाम इंशाल्लाह। आपको मुझे नहीं पता चलता तो ना लगे बस अल्लाह तू लिख ले, क्योंकि आज फिर रिवाइवल का टाइम है, आज फिर दीन के एक इनकलाब का दौर है। आप इस क्लासरूम से ज़रा बाहर तो जाएं, जितना इससे दूर जाते जाएं और ज़रा अपने मुल्कों तक तो पहुँच के आएँ, आपको ज़िंदगी का वो रंग दिखेगा ही नहीं जो इस किताब के सफ़ों में आप देख रहे हैं। मकसद वो ज़िंदगी का है ही नहीं आज हमारे अपनों का भी, जो इस किताब आपको मकसद दे रही है। तो किसके पीछे लगना है, खानदान, घर, बिरादरी, जो दुनिया के साथ हो रहा है आपके साथ भी है, तो आप आम लोग हैं, लिखें अपने लिए। क्या मैं हूं साबिकून अलवलून में, क्या मैं एक आला किरदार की हूं? तो आप अपनी जिंदगी को देखें, जो सबका गम है वो मेरा ही गम है तो मैं कोई नहीं हूं, जो सबकी खुशी है वो मेरी खुशी है तो कोई नहीं हूं मैं, जो सबको मुसीबतें पड़ी हुई हैं इस सोसाइटी में पनपने के लिए वो मुझे भी पड़ी हुई है तो कोई नहीं हूं मैं, वो फिर मैं मीडियोकर हूं, मैं मिडिल मैन हूं, जहां जहां सारे जाके चक्कर लगाते हैं, धक्के खाते हैं, अगर मैं भी उसी लाइन में तो मैं आम हूं। खास बंदा वो होता है उसकी दुनिया भी खास हो जाती है। बात समझ गए कि नहीं? आपने देखा होगा मेहमाने खसूसी को लोग खाना उसकी टेबल पे पहुंचा देते हैं जबकि दूसरे लोग लाइनों में लगे होते हैं। जिंदगी में अल्लाह ताला आपको दिखा देगा, फिक्र ना करें, थोड़ा सा जमें कि आप खास हैं। कभी अपना तकाबुल दूसरों से ना किया करें, फिर सब भी तो ऐसे ही। अच्छा सब कर रहे हैं, मैंने तो बिल्कुल नहीं करना, क्रॉस लगा दे। अगर आपने साबिकून अलव्वलून बनना है, मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा कहते हैं जो प्रिंट कॉमन हो जाए हम नहीं पहनते, ले आए थे बहुत सारों को देख लिया और अल्लाह ना करे किसी मासी को देख लिया, आप तो ये प्रिंट फेंक दो, मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि ये सब ने पहन ली, कॉमन हो गया। तो जिंदगी का कॉमन स्टाइल चाहते हैं आप और मैं? रोज सुबह उठ के जैसे दुनिया भाग रही है आप भी मैं भी भागे, तो भागेंगे तो अल्लाह भगाएगा, मिलेगा एंड पे वही जो आपके नसीब का था। कर गए जो नेकी इन्होंने करनी थी। और देखिए इब्तदाई दौर है, खुफिया दौर है, कोई फ्लायर भी नहीं थे छाप सकते अल्लाह के नबी, कोई व्हाट्सएप पे वाइबर पे मैसेज भी नहीं कर सकते थे। उस दौर में इन 10-12 लोगों ने अपना नाम ऐसा लिखा दिया इस्लाम की तारीख में कि वो कहना चाहिए पत्थर पे लकीर हो गई है। आइए ज़रा देखिए जब इस मुश्किल में लोग अल्लाह की तरफ आते हैं तो मुश्किलात क्या आती हैं। और मैं एक एक जुमले के ऊपर आपको और ख़ुद को दावत दूंगी कि अपनी आज की मुश्किलात को साथ साथ रखें और ख़ुद से पूछें कि अब मुझे भी आज ये मुश्किलात आती हैं जब मैं अल्लाह का बनना चाहती हूँ। पहली बात, नमाज का वक्त आता तो आप किसी पहाड़ की घाटी में चले जाते और अपने रुफका के साथ छुप छुपा कर सजदाए अबूदियत बजा लाते। 3 सेकंड लें जरा सोचने में, आज इस गए गुजरे दौर में भी क्या किसी को नमाज पढ़नी इतनी मुश्किल है कि पढ़ता कोई देख लेगा तो आपको कैद में डाल देगा, जेल में डाल देगा? तो फिर हालात आज तंग नहीं है, तब तंग थे, आज अभी वो मुश्किल नहीं आई जो पहले आ गई थी। सिर्फ चाश्त की नमाज हरम में पढ़ते क्योंकि ये नमाज खुद कुरैश के हां भी मरवज थी। नोट करें, हर सोसाइटी में जितनी मर्जी खराबियां आ जाएं कुछ ना कुछ रिचुअल्स दीन के होते हैं, तो वो करने आज भी आपको मुश्किल नहीं है। आप शबे बरात की रात इबादत करें, पूरा मुआशरा आपका साथ देगा क्योंकि मुरव्वज है, हमारे यहाँ रिवाज है इस इबादत का। आप हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, कोई रुकावट नहीं है आपके मेरे हाथ में। लोग फूलों के हार डाल के आपको भेजेंगे और बादाम भेजेंगे, खा के आना और याद रखना हमें क्या तोहफा देना है, लेके आओ। कुछ नहीं कि आज बड़ी आम है, आप कुरान खानी रखें घर में, आप 50 सोचेंगी लोग 60 आएंगे क्योंकि मुरव्वज है। आप दुरूद तंजीना पढ़ा लें, आप सूरह यासीन का ख़त्म तो करा लें, आएंगे लोग, रिवाज है। और आप देखिए सिर्फ एक नमाज जो रिवाज थी वो अल्लाह के नबी सामने आके पढ़ते थे, यहाँ एक और हिकमत नोट करें क्योंकि आप सीरत से हिकमत लेने बैठे हैं, ये किताब तो खुद भी पढ़ लेंगे, क्या बड़ी बात है। हिकमत क्या पता चली कि सिर्फ वो चीज़ जो अभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की उसको छुपा लें या उसके लिए टाइम ले लें, वट एवर इज पॉसिबल डू इट। हमें इतना सा मुश्किल वक्त होता है ना तो हम उसके लिए सारे ही छोड़ देंगे, क्या करें हालात नहीं साजगार, छुट्टी, 15 मिनट का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, सिर्फ 15 मिनट का, तो 3.5-4 घंटे की छुट्टी, मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। अल्लाह के नबी ने चार्ज की नमाज आके फिर भी वहीं पढ़ी, क्यों पढ़ी? कि किसी को बुरा ही नहीं लगा, किसी ने सोचा ही नहीं कि ये कोई स्पेशल दीन पे आ गए हैं जो ये नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो छोटा सा सिरा पकड़ लेता है ना दीन का, अल्लाह उसको आगे ले आता है। छोड़ देते हैं ना दीन को फिर कभी हाथ नहीं आएगा, अभी पकड़ा हुआ है हमने, अभी कुछ दिन बाद बहुत सारों का छूटेगा जब बैक टू रूटीन लाइफ आएगी, किसी का स्कूल खुल जाएगा, किसी की जॉब बुला लेगी उसको, किसी को नौकर बुला लेगा, जिसका सिरा हाथ में है वो कहीं ना कहीं अटका रहेगा तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बंदा रहेगा। तो ये हिकमत है, जितना मजबूर करे बस उतने हो, जाज की नमाज मजबूरी नहीं थी, जाके सामने पढ़ी। और यहाँ से एक और बड़ा प्यारा मिजाज भी है कि चिढ़ नहीं चढ़ाते थे, बगैर तैयारी के काम नहीं करते थे, नारे नहीं लगाते थे, दावे नहीं करते थे, करके दिखाते थे। एक मरतबा नबी सल्लम हज़रत अली के साथ किसी दर्रे में नमाज अदा फरमा रहे थे कि आपके चचा अबू तालिब ने देख लिया। इस नए अंदाज की इबादत को देखकर वो ठिठक गए और बड़े गौर से देखते रहे। नमाज के बाद आपसे पूछा, ये क्या दीन है जिसको तुमने इख्तियार किया है? आपने फरमाया, हमारे दादा इब्राहिम का यही दीन था। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि मैं इसे इख्तियार तो नहीं कर सकता, लेकिन तुमको इजाजत है और कोई शख्स तुम्हारा मुजाहिम ना हो सकेगा। मुजाहिमिन हर्डल नहीं बनेगा, रुकावट नहीं डालेगा, मुजाहमत नहीं करेगा। इस पैराग्राफ से क्या समझ आया? कि अल्लाह के नबी के नए अंदाजे इबादत को देखकर अबू तालिब ठिठके। आज भी लोग आपको देख के कहेंगे, ये तुमने क्या शुरू कर दी है, ये नमाज में तुम हाथ ऊपर करती हो, ये तुमने क्या स्काफ पहनना शुरू किया। तो नबी का जरा जवाब हाईलाइट कीजिएगा, हिकमतों में डूबा हुआ जवाब है, हमारे दादा इब्राहिम। किसको कह रहे हैं ये जुमला? चचा को। तो जब मेरा दादा है तो आपका भी तो कुछ लगता होगा ना, कॉमन ग्राउंड। तो आपको कोई कहता है ना, ये आप क्या कर रहे हैं, तो आपके हमारे नबी की सुन्नत, हमारे नबी की बीवी जैसा रंग रूप अपना रही हूं, बात ही खत्म। तो लोगों को हमेशा नेकियों में साथ लेकर चले। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु भी तहरीक इस्लामी के इसी खुफिया दौर में ईमान लाए और आपका तरबियती नंबर बतहकीक अलामा शिबली छठा या सातवां है, यानी ओनली 6 और 7 पीपल वर अहेड ऑफ हिम। उसके ऊपर इन्होंने, यानी फौरन शुरू दौर में ईमान लाने वाले हैं। ये भी इन्हीं मुस्तरिब लोगों में थे जो बुत परस्ती छोड़कर महज फितरत सलीम की रहनुमाई में खुदा का जिक्र करते और इसकी इबादत बजा लाते। इन तक किसी जरिए से नबी सल्लम की दावत का नूर पहुंच गया। उन्होंने अपने भाई को भेजा के जाकर सही मालूमात लाएं। उन्होंने नबी सल्लम से मुलाकात की। सुन चुके हैं वाकई, इनका इंट्रो सेशंस में सुना चुकी हैं आपको। दूर थे, पहले भाई को भेजा, जाके देखो क्या होगा। भाई आया तो क्या किया, उस भाई ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, कुरान सुना और भाई को बताया कि मैंने इस शख्स को देखा है, लोग इसे मुर्तद कहते हैं। मुर्तद कौन होता है? देखिए बिगड़े हुए मुआशरे की शान, कि जो शख्स दुनिया भर को ईमान से माला मार करने आया था, इस पर बेदीनी का ठप्पा लगा रहे हैं। और हर दौर के मजहबी ठेकेदारों का यही तरीका कर रहा। कल मुर्तद कहते थे, आज क्या कहते हैं? बेदीन हो गए हो, ऐसा भी हो गए हो, वहाँ भी हो गए हो, दूसरों से अलग ही दीन तुमने बना लिए। तुमने कोई देखा था किसी को ये काम करते खानदान में? तो ये जुमला लिखे, सच्चे दीन पर आने की अलामत, सिम्टम्स होती है ना, हर काम का एक सिम्टम है ना। लोग टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी तो नहीं है, फिर सिम्टम्स से पहचानते हैं बाज़ुकात। सच्चे दीन पे आने की सिम्टम या निशानी क्या है? कि लोग आपको मुर्तद ही कह दें, इनके पास ना जाना, इन्होंने दीन बदला हुआ है, इनका कुरान फर्क है। मुझे चंद दिन पहले किसी सिस्टर ने बताया कि जब आप लोगों ने इधर आके शुरू शुरू में काम करना चाहा, तो बकायदा किसी ने उनके जो मोहब्बत करने वाले थे, वो कॉल उनके ही होंगे, तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो बिल्डिंग में ऊपर आए हैं ना, इनके पास ना जाना, इनका कुरान ही फर्क है। और वो कहती है, जब मैं आई ना आपके पास शुरू में, तो मैं वो जिसको कहना चाहिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं आप लोगों के कुरान देखती होती थी कि आपके कुरान क्या है। इतना लोगों ने डराया हुआ था आपकी जगह से, आपको भी डरा ही होगा, लेकिन आप डरे ही नहीं।
कुछ लोग कहते हैं कि आप हदीसों पे यकीन नहीं करते, तो मैंने कहा कि मैंने तो खुद पढ़ रही हूं हदीसें उनके साथ।
तो कुछ लोग, अब मैंने नया अपने ऊपर इल्जाम सुन लिया इसी हफ्ते में कि आप तो ये मुख्तसर सही बुखारी पढ़ाते हैं, ये कोई नहीं है। सही बुखारी नहीं पढ़नी, बुखारी पढ़नी है। अच्छा। मैंने कहा सही बुखारी नहीं पढ़नी, तो गलत बुखारी पढ़नी है। नहीं, सही बुखारी क्या है? अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ जहालत की कोई हद नहीं है। आज के दौर के मोहसिन है वो शख्स जिन्होंने ज़ईफ और बातिल रिवायतों को अलग कर क्या हदीस को छांटा है, नासिरुद्दीन अल्बानी। उनके बारे में जो जुमले मैंने सुने, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा सुने। میرے ذہن میں کسی بھی بزرگ کا جو احترام ہے نا وہ ان کا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کچھ کئی سال 8-10 سال اب ہو گئے ہوں گے اس سے زیادہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. جس دن ان کی ڈیتھ کی خبر آئی تھی تو ہمیں ایسے رونا آیا, دکھ آیا جیسے ہمارے خاندان کو کوئی بزرگ فوت ہوا ہے. لیکن مجھے اب کسی سے پتہ چلا اپنوں میں سے پیاروں میں سے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بخاری میں سے پتہ نہیں کیا کچھ نکال دیا, جو باتیں ان کے مسلک کو ترویج کرتی تھی وہ نکال لی رکھی. میں نے کہا ان کا مسلک تھا کیا؟ قرآن سنت. تو بات سمجھیے گا, اب یہ غم ڈال دیا لوگوں کو کہ صحیح بخاری نہیں پڑھنی, اصل بخاری پڑھو تو غلط بخاری ہوگی. میں نے کہا مجھے بخاری کا نام سنا سکتی ہیں کیا؟ صحیح بخاری کا جو پورا نام ہے نہیں آتا تھا, صرف پروپیگنڈا, صرف پروپیگنڈا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ چلے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہدایت دے. دیکھیے کبھی کوئی آپ سے کہے نا ابھی یہ سیکھیں, آپ کو میں یہ مکی دور بڑی ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی کیونکہ ابھی ہم مکی دور میں, سیدھی سی بات ہے, ابھی مدنی آئے گا انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے جواب دینا سیکھیں کہ اللہ پھر ہمیں ہدایت دے. کیوں بحث کرتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی کہے کہ نا آپ گمراہ ہے تو میں کہوں گی پلیز میرے لیے تو دعا کرے. میں تو خود دن میں 17 بار کہتی ہوں اہدنا صراط المستقیم, تو میری بہن آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں آگ میں نہ جاؤں. بحث نہ کریں آگے سے, نہ صفائیاں پیش کریں. کس کو صفائی پیش کریں گے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں؟ جاہلوں کے تو منہ نہیں لگنا چاہیے. وار دن الجاہلین حلقت ان نہ کفئی نہ کمن المستحسین, ہم آپ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے والوں سے بچا لیں گے, آپ ان کے منہ نہ لگے. تو یاد رکھیے گا کہ دین کے رستے میں آج بھی یہ سارے مائل اسٹون آئیں گے جو اس دور میں آئے تھے. آپ یہاں سے برگن جاتے ہیں اور یہاں تو روڈ بھی ایک ہی ہونی ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جائیں تو رستے میں کچھ سائنز آئیں, کچھ سینریز آئیں, لیکن بعد میں جاؤں تو وہ نہ آئیں؟ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب میں نے غلط روڈ لی ہوئی ہے, مانتے؟ یہی چیز صراط مستقیم کے رستے کے مائل اسٹون ہے. صراط الذین انعمت علیہم میں روز ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ جس رستے سے گزر کر ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور بڑے بڑے نبیین اور انبیاء اور صالحین اور شہداء گزرے ہیں تو مجھے بھی اسی رستے پہ لے جا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آسان راستہ دے, ہم یہ نہیں کہتے اللہ آسان راستہ دے, ہم کہتے سیدھا دے, مشکلوں والا ہے, ٹیڑھا ہے میڑھا ہے, لیکن رہنا اسی پہ کیونکہ رستہ یہی ہے جانے کا. تو مشکلات آئیں گی. آج بھی اپنے آپ کو بڑا بڑا کر کے یقین دلا لے, جب میں لوگوں کی مرضی سے ہٹ کر اللہ کی مرضی کی بنوں گی تو وہی ساری مشکلات آج بھی آئیں گی جو یہ پہلے دور کے لوگوں میں آئی تھی. وہی جمے گا جس کو مقصد کا یقین ہوگا, اور وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان ہو پیاری. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اور ابو ذر دور بیٹھے تھے, پہلے بھائی کو بھیجا, جاؤ دیکھو کون ہے وہ سب ہے. بھائی نے آ کے تسلی دی پھر بھی دل نہیں جما, پھر خود آئے اور جب دیکھا سب کچھ تو کیا کہا, یہ ساری باتیں سنیے. بھائی کو بتایا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے, لوگ اسے مرتد کہتے ہیں لیکن وہ تو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, یعنی اچھا اخلاق, مکمل اخلاق, اور ایک عجیب کلام سناتا ہے جو شعر و شاعری سے بالکل مختلف ہے. اس کا طریقہ تمہارے طریقے سے ملتا جلتا ہے, یعنی وہ دین پہ آنے سے پہلے فطرت پہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو فطری تھا, اس اطلاع پر خود آئے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ خود مسلمان ہو کے واپس گئے, اپنے بستی والوں کو جمع کیا تو ان کو دعوت دی, پوری بستی نیک شخص کے کہنے پہ مسلمان ہو گئی. اتنا ان کا نام تھا اپنی بستی میں. دعا کرے ہمیں اللہ وہ شخص بنا لے کہ ہمارے ہاتھ پہ ہمارا پورا خاندان دین پہ آ جائے, میری ساری دوستیں دین پہ آ جائیں میری وجہ سے, میرے رشتہ دار بھائی بہن سارے میری وجہ سے دین پہ آ جائیں. یہ دعائیں مانگا کر, یہ وقت جو ہوتا ہے نا علم کی محفل کا, یہ دعائیں مانگنے کا بھی ہوتا ہے. کان ادھر, دماغ بھی ادھر, اور اندر ایک خاموش دھڑکنوں کے ساتھ دعائیں نکل رہی ہوں کہ اللہ مجھ سے بھی کچھ کرا, اللہ مجھے بھی چن, اللہ مجھے بھی استقامت دینا, اللہ مجھے کوئی چھوٹی سے فائدے میں لے کے ادھر ادھر نہ کر دینا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ آپ سے کام لے گا. میں نے جتنی دعائیں علم کی محفل میں بیٹھ کے مانگی ہیں اپنی زندگی میں اللہ نے ایک ایک گن کے پوری کر دی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا. یہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہوتی ہیں, ارادے کرنے کی, نیتیں کرنے کی, پلانز بنانے کی, اپنا مستقبل دیکھنے کا یہ وقت ہے. اور اگر اس وقت دل دماغ صرف فون میں الجھ جائے اور میسیجز دیکھنے میں آ جائے اور بچہ تو نہیں رو رہا, روئے گا تو چپ کر جائے گا, پھر کیا؟ میسیج کوئی کرے گا تو دوبارہ دیکھ لیں گے, कॉल मिस हो जाएगी, दोबारा कर लेंगे, क्या क़यामत आ जाएगी। लेकिन शैतान इतना होशियार है, अल्लाह के अलार्म हमें नहीं नज़र आते, और दुनिया वालों की एक घंटी पे हमारा दिल दिमाग सब ट्रैश, जैसे वो कहते हैं ना नर्वस ब्रेकडाउन होता है ना, इस तरह हमारी पूरी तवज्जो हट जाती है दीन की बात के दौरान। तो क्या सीखा अबू ज़र की बात से, इसको अगले पैसेज में देखिएगा, यानी उनकी बात के ऊपर कमेंट किया। इससे मालूम होता है कि बावजूद छुपाने के, अब ये इख्फा क्या है, वो तजवीद का रूल, छुपाने के मुश्के हक, यानी हक की खुशबू, मुश्के हक की खुशबू को हवा की लहरें ले उड़ी थीं, और खुदा के रसूल के लिए बदनाम को निलकाब तजवीज़ करने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी माहौल अभी पुरसकून था, अभी वो खतरे का पूरा पूरा अंदाजा नहीं कर पाया था। बात वाज़े, वो कहते ना इश्क और मुश्क ये सबको पता है, और मैं आधी आयत पढ़ के छोड़ दूं तो पूरी कितने करेंगे, आधी हदीस बोल के छोड़ दूं तो कितने पूरा करेंगे, करेंगे इंश। बस यही जुमला मुझे रोज इधर लेके उठा देता है। खुशबू नहीं छुपती, बदबू भी नहीं छुपती, बताना नहीं पड़ता कि इधर गुलाब पड़ा हुआ या पुदीना रखा हुआ, वो खुद ही बोलेगा। हक में इतनी कशिश है, फितरत सलीम जो होती है ना रूह, वो आ जाती है। लोग इल्ज़ाम लगाएं, रोके, मना करें, अल्लाह किसी ना किसी बहाने से उसको सुना ज़रूर देता। ये मैं खुद हैरान होती हूँ, और मैं कहती हूँ अल्लाह ये तेरा काम, तू जाने तूने किसको सुनाना है किसको नहीं सुनाना। और अपना नाक बंद हो तो खाने में भी खुशबू नहीं आती। तो हक फैलना शुरू हो गया, लेकिन अभी मक्का वालों को कोई खतरा नहीं लगा। ये चार छह लोग सर फिरे हैं, शुरू में बिल्कुल वो यही सोचते थे ये एक हद से बड़ा हुआ ग्रुप है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, देखिए एक और अहम तारीखी हकीकत के तहरीक के नवलीन अलम बरदार। अलम बरदार कौन होते हैं? झंडा उठाने वाले, मुराद है कि शुरू में मुसलमान होने वाले लोग। तहरीक के इन अव्वलीन अलम बरदारों में कोई एक भी ऐसा ना था जो आला दर्जे के मजहबी और कौमी मनासिब पर मामूर हो, यानी कोई मशहूर शख्सियात नहीं थी। आज की जुबान में अगर इस जुमले को आसान करो कि नबी सल्लम को मानने वाले शुरू शुरू में जो दौर के लोग थे ना, वो कोई रिलीजियस लोग नहीं थे, कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई किसी दीन के साथ जुड़ा हुआ शख्स नहीं था। ये हजरात अगराज के बोझ तले दबे हुए और मुफाद की डोरियों से बंधे हुए नहीं थे। हमेशा ऐसे ही आज़ाद फितरत नौजवान तारीख में बड़ी बड़ी तब्दीलियां पैदा करने के लिए अगली सफ़ों में आया करते हैं। लीडरों और ओहदेदारों में से कोई भी दर ना आया, इसको हाईलाइट करें। और जहाँ एक फिर मैंने हिकमत का मोती चुना, आपको भी शेयर करती हूँ। दावत के आगाज में हमेशा दरमियाने दर्जे के और कमज़ोर लोग आते हैं, किसी भी दर्जे में। वजह क्या है कि उनके रास्ते की रुकावटें कोई नहीं होती। अब ये जितने लोग आए थे ना, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर थे, ना किसी मस्जिद के इमाम थे, ना किसी बहुत बड़े इदारे को रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि उनके रास्तों में रुकावटें होती हैं। सबसे बड़ा तो अपना मनसब, अगर हम मान गए तो फिर हमें ये मनसब छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात शोहरत, हम इतने मशहूर लोग हैं, अगर हम इधर आ गए तो हम गुमनाम हो जाएंगे। तो आपका मेरा इसमें एक अमल है, आप सबको भी कहूंगी अपने समेत, दोबारा मेरे लिए भी एक रिवीजन है दावा पैकेज मुरतब करने में, कि नए नए जगहों पे काम शुरू करें ना, तो आम लोगों पे काम करें। जितना मगज़ आपने बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स पे मारना है ना, बस कोई बहुत मशहूर है, कोई ऐसे ही कोई आर्टिस्ट है, या कोई किसी माशरे का बहुत बड़ा एक नाम है, तो उस पर भी वक्त ना लगाएं। पहले अपनी टीम तैयार करें, छोटे छोटे लोग 8 से 10 12 जमा हो जाएंगे, फिर किसी तरह उन तक लेकर चलें। क्योंकि जिनके रास्तों में रुकावटें बहुत होती हैं, वो बेचारे आने की ख्वाहिश के बावजूद भी तो नहीं आते ना। मतलब आप रोड पे जा रहे हैं और आपको एग्जिट लेना है, तो पहली लेन वालों को एग्जिट लेना आसान है ना, फोर्थ लेन वाले को तो बीच में 3 दफ़ा इंडिकेटर दे के अपने आप को फर्स्ट लेन में लाना है ना। इधर फोर्थ नहीं लेन होती है, अमेरिका में 4 लेन्स भी होती हैं बस जगह, चौड़ी चौड़ी रोड्स, लंबी बड़ी, तो वो एग्जिट लेने से पहले ही कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी तेजी में इधर लेना होता है, अपनी स्पीड को इधर उधर करते हैं, फिर कहीं वन पे आते हैं। तो जिन बेचारों की रुकावटें होती हैं, उन पे अभी वक्त नहीं होगा। और आप देख लीजिए, लीडर और अहदेदार नहीं आए अल्लाह के नबी के पास। अब्दुल्ला बिन मसूद चरवाहे थे, खबाब बिन अरत लोहार थे, بلال غلام تھے، یہ آتے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان اتنا سخت تھا کہ پھر بعد میں اس نے دوسروں کو بھی پگھلا دیا۔ تحریک اپنے اس خفیہ طور میں قریش کی نگاہوں میں درخور اعتنا نہ تھی۔ درخور اعتنا کہتے ہیں جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی قریشیوں کو پھر ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ دیکھیے آج ایسے ہی نا، روز مائٹ بھی ہنڈرڈس یا مے بھی تھاؤزنڈس لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دنیا میں، تو کوئی اتنا شوشہ تو نہیں اٹھتا نا۔ لیکن اگر کسی ملک کا صدر مسلمان ہو جائے، ایک ملک کے صدر نے کسی سیاسی لیڈر کی کوئی اس کی قریبی رشتہ دار ہوئی تھی یو کے میں، تو آج اسی نام سے اس کو کہتے ہیں یہ فلاں سیاستدان کی قریب سے رشتہ دار ہے، تو جب کوئی مشہور بندہ آتا ہے تو شور زیادہ اٹھتا ہے نا۔ تو یہ حکمت تھی اللہ کی، نوٹ کریں۔ ابھی اللہ نے اسلام کے پودے کی جڑیں بنانی تھی مکہ میں۔ اگر شروع میں کوئی بڑی شخصیت مسلمان ہوتی تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے خلاف اتنا طوفان اٹھتا کہ وہ کچے سے پودے کو اٹھا کے پھینک دیتے، تو ابھی اللہ بڑی بڑی شخصیات کو اسلام کو ہی نہیں تھا دیتا، تاکہ اللہ کے نبی خاموشی سے اپنا کام کرتے ہی رہیں، کرتے رہیں۔ اور میں کہتی ہوں اگر آج آپ کو مجھے اپنے مقصد کا یقین ہے نا، آپ کہتے 100 لوگ اس ہال میں بیٹھ سکتے ہیں، نہیں آتے۔ مثال دیتی ہوں آپ کو، حکمت معلوم کر لیں کہ 100 نہ آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ 4 منزلوں والے لوگ جب 100 لوگوں کو آتا اور جاتا دیکھیں گے تو کان کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اس میں ابھی ان 4 گھنٹوں میں 100 نہ آئیں، سارے دن میں 4 کلاسیں کر لیتے ہیں 25-25 کر کے، اینڈ پہ 100 ہی ہوں گے۔ اپنا پروفائل لو کر لیں۔ 4 لوگوں کی بھی کلاس ہوتی ہے آپ کے اسکول میں، آپ کو پتا 4 اسٹوڈنٹ نہیں ہیں ادھر، 2 اسٹوڈنٹ 2 ایڈمن، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں شام کو، صرف 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس روم میں، اور جسے وہ 4 آتے ہیں میں کہتی روم فل ہے اللہ کی قسم، 4 یہ ہیں 40 فرشتے بھی تو ہیں نا وہاں، وہ 4 آئیں تو میں مطمئن ہو جاتی ہوں کہ اب سب آ گئے، میں خوش ہوں اس پہ بھی۔ ریئلی کلوز سرکٹ میں کلاس ہوتی ہے، آئے ہیں لوگ، جن کے لیے شروع کیا تھا وہ تو کوئی نہیں آئے، تو جن کو طلب تھی وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہاں سے آ گئے، دونوں ہی شاید جاب سے سیدھی آتی ہیں ادھر، اور میں نے جتنی ڈیڈیکیشن دیکھی ہے مجھے ان سے بڑی اچھی امیدیں ہیں۔ تو یہ نہ دیکھیں کتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ خالی کرسیاں تھوڑی ہیں، یہ سب بھری ہوئی ہیں، 2 لوگ اور 20 فرشتے، تو فرشتے زیادہ اچھا سیکھیں گے کہ انسان سیکھیں گے؟ یہ 2 جو جم گئے ہیں نا، یہ بعض دفعہ 40 سے زیادہ کام کریں گے۔ تو لہٰذا شروع میں تھوڑے لیول پہ کام کریں، مت کہیں لوگ مجھ سے کبھی کوئی پوچھتے ہیں آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، کتنے لوگ آئیں گے درس میں، تو آپ درس میں آئیں گی، تو میں کہتی ہوں 1، اور وہ آپ ہے۔ آپ بلانے والی آ جائیں، کوئی بھی نہیں آپ کی دعوت پہ آئے گا نا، مجھے کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے کہ 100 لوگ ہوں گے تو نہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے مجموعوں میں ہم نے نہیں جانا، اور میں نے کچھ لوگوں کا سنا ہے کہ لوگ تھوڑے ہوں تو وہ درس ہی مختصر کر کے 15-20 منٹ میں نکل جاتے ہیں، پھر لوگ کہانیاں سناتے ہیں، ہم نے اتنا کہا، یہ کیا، وہ کیا، بلایا، لیکن انہوں نے تو چھوٹا سا درس کیا اور چلی گئی، کیونکہ لوگ تھوڑے تھے۔ بڑا مجمع ہو تو پھر گھنٹے کا ٹائم دیا ہو تو 2-2.5 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ بڑی لے تھی۔ یہ نہیں کرنا۔ جس کو کام سے مقصد ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میں اس اسکول میں 12 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہوں، میرا نام لکھا، میرا کاؤنٹر ادھر چل رہا ہے، میرا اللہ کے پاس ریکارڈ چل رہا ہے۔ اب اس 12 گھنٹے میں 12 آگے یا 1200 آگے یا 12000 آگے، کسی کو کیا لگے؟ آپ دیکھیں یہ کیوی ہے نا، اس کے کاؤنٹر پہ ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے جو کام کرتی ہے، اس کو صبح سے شام جہاں کھڑے ہونے کی پے تو دے ہی دینی ہے نا کیوی نے۔ اس دن چاہے 100 کسٹمر گزریں، 20 گزریں، 1000 گزریں، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب آپ اللہ کے نام پہ کھڑے ہو کے آ گئے نا، آپ کچھ بھی نہ کریں، اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بھی نہیں آیا، تو اللہ نے آپ کا اجر لکھنا شروع کر دیا۔ کوئی قریب سے آتا ہے، کوئی دور سے آتا ہے، کوئی مشکلوں میں آتا ہے، کوئی آسانیوں میں آتا ہے، اللہ ایک ایک پینی کا اجر دے گا آپ کو، اور جو جتنی بڑی قربانی دے کے آتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بڑی جزا دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیں تو دین کی وہ چوٹیاں بنی، آج قربانی اللہ دین کو نہیں، سب سے پہلے جو چیز ہمارے اسکیجول سے آؤٹ ہوتی ہے نا وہ دین کا علم ہے۔ کک آؤٹ، جاب مل گئی، کک آؤٹ، دنیا کو ہماری ضرورت پڑ گئی، کورس شروع ہو گیا۔ یہ کہانی عام لوگوں کی، یہ آپ کی باتیں نہیں ہیں کیونکہ آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آتی ہے رکاوٹ میں وہ یہی آتی ہے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو شروع میں قریش نے کچھ زیادہ نہیں سمجھا ان لوگوں کو، وہ سمجھتے تھے یہ چند نوجوانوں کا سر پھرا پن ہے، फेनेटिकिज्म, उल्टी सीधी बातें करते हैं, 4 दिन में दिमागों से ये हवा निकल जाएगी। लोग कहते हैं ना आजकल इस्लाम फोबिया हुआ हुआ है। हमारे सामने कोई दम मार सकता है, मगर बरसरे इक्तदार तबका तख्ते की आदत पर बैठा अपने जोमे कुव्वत में मगन रहा, और सच्चाई और नेकी की कोमपल तख्त के साए में आहिस्ता आहिस्ता जड़ें छोड़ती रही। खूबसूरत जुमला, हाईलाइट कर लें। और नई पत्तियां निकालती रही, यहां तक कि तारीख की जमीन में इसने अपना एक मुकाम बना लिया। ये आपके लिए उम्मीद वाला जुमला, यहां तक के तारीख की जमीन में इसने अपना एक मुकाम बना लिया। हक अपना मुकाम बनाता है, बस आप जैसे लोगों के जमने की जरूरत होती है। कुरैश का एतकाद ये भी था कि लात मनात और उज्जा, जिनके आगे हम पेशानियां रगड़ते और चढ़ावे पेश करते हैं और जिनके हम खुदामे बारगाह हैं, अपने एहतराम और मजहब बुत परस्ती की खुद हिफाजत करेंगे और इनकी रूहानी मार हंगामे को खत्म कर देगी। खुलासा कर दूं, जब आप अपने इर्द गिर्द वालों में से पहले शख्स बनकर दीन के नाम पे निकलेंगे, किसी नाम पे, अब इसको बिक कर लें, इल्म सीखने से लेकर इल्म पे अमल करने तक और इल्म फैलाने तक और इल्म की खिदमत करने तक, रिएक्शन होगा। लोग आपको एलियन समझेंगे, अजनबी। फतूब अलिल गुरबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन गुरबत से शुरू हुआ था, यानी अजनबीयत से। जो दीन पे आता था अजनबी, आज कोई निकाब में कहीं खड़ा दिखे तो लोग कहते हैं अजनबी, कोई बहुत सूटेड बूटी तो कहते हैं अपनी, बिल्कुल अपनी लगती है, और जरा सा हाल उलिया दीन का हो तो कहते हैं ये कोई मौलवी टाइप लगते हैं। तो अजनबीयत आ गई ना, गुरबत, स्ट्रेंजर, बैकवर्ड और पेसिमिस्ट, तंग नजर, खुटे हुए लोग। ये जुमले क्या हैं? ये वही जुमले हैं जो उस दौर में थे, लेकिन फतूबा बस खुशखबरी है, ग्लैड टाइडिंग। कौन? जिन्होंने इस दिनों में अपने आप को दीन पे जमा लिया। फरमाया एक वक्त आएगा दोबारा गुरबत शुरू हो जाएगी, और आज की गुरबत तो उस दौर की गुरबत से कुछ ज्यादा ही है। तो लिहाजा जिसको यकीन है ना कि मैंने सही रास्ता चूज किया, वो और जमेगा, और जिसके अंदर शक है ना भी, वो निकल जाएगा। वो कहेगा मैं ही बेवकूफ बनी बैठी हूं, बाकी तो मेरे सारे अपना काम पाक कर चुके, किस्सा तमाम, खत्म। नहीं, आप एक दिन में ख़त्म करते हैं, अल्लाह ताला आपको आधे दिन में फारिग करने को तैयार है, लेकिन आपका अपना काम है। इसमें दुहाई दे, रोएं, तड़पें कि अल्लाह मेरा नाम ना कटे, मुझे ना ले ऑफ करना, मुझे पता मुझे करना कोई नहीं आता काम, मैं अच्छी स्टूडेंट कोई नहीं हूँ, तर्जमा कोई नहीं याद होता, तजवीद भी नहीं अच्छी, पर मेरा नाम ना काटना अल्लाह, क्योंकि मैं इधर से जाना चाहती हूँ कब्र में। ऐसे लोगों को अल्लाह एंड तक ले आएगा। कभी आपने अबू बकर के बारे में नहीं सुना होगा कि उनको तर्जमा ज़बानी याद था कुरान का, या उनको कितनी आयतें हिफ्ज़ थी, कभी सुना है आपने? कभी आपने हिफ्ज़ की लंबी लंबी दुआएं उनकी सुनी? लेकिन नाम क्यों आता है अबू बकर का? और ये 10 लोग आज आपको पता चल गया, शायद नहीं पता था। साबिकून अव्वलून, अजनबी, वो अंधेरों में चंद शरारे। ये वक्त होता है जब बंदा अपना दर्जा जन्नत के आला मुकाम पे लिखवाता है, असाबुल यमीन से ऊपर उठकर, उलाइका हुमुल मुकर्रबून। तो ऊपर तो फिर थोड़े ही लोग जाएंगे ना, नीचे ज्यादा होते हैं। फर्स्ट क्लास की कितनी सीटें होती हैं जहाज में? 10-12, और सेकंड क्लास या इकोनॉमी क्लास की शायद 100, 200, 300 भी होती हैं। तो ये आपके मेरे दिन हैं इस चीज को काम करने और कराने के। देखिए जब आ जुगे, बैठ जुगे, अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, अपने सेलफोन बंद करके एक पूरा दिन यूज करके देखें इस क्लासरूम में आकर, आपको ऐसे लगेगा एतकाफ से उठे। यकीन करें, ये हम अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर लेते हैं, अल्लाह पर ट्रस्ट करें। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।